उर्दू का पहला नॉवेल मिरातुल उरूस, तहरीर डिप्टी नज़ीर अहमद, पेशकश सैयद इरफान अली .com। बाप पंद्रवा, अजगरी पर मामा का तीसरा वार। हजारवी मल की तो आदत थी, जब कभी मामा अजमत को अपनी दुकान के सामने से आते जाते देखता, छेड़ता कि क्यों मामा, हमारे हिसाब किताब का भी कुछ फिक्र है। और सातवें आठवें दिन घर पर तकाजा कहला भेजता। एक दिन हसबे मामूल मामा अजमत सौदे सलफ को बाहर जाती थी। हजारवी मल ने टोका। मामा बोली, ए लाला, ये क्या तुमने मुझसे आए दिन की छेड़खानी मुकर्रर की है? जब मुझको देखते हो तकाजा करते हो, जिनको देते हो उनसे मांगो, उनसे तकाजा करो। मैं बेचारी गरीब आदमी, टके की औकात मुझसे और महाजनों के लेन देन से वास्ता। हजारवी मल ने कहा, ये बात तुमने क्या कही कि मुझसे वास्ता नहीं, दुकान से तो तुम ले जाती हो, हाथ को हाथ पहचानता है, हम तो तुमको जानते हैं और तुम्हारी साख पर देते हैं, हम घर वालों को क्या जाने। मामा ने कहा, ए लाला, होश में आओ, ऐसे घर के भूले मेरी ऐसी क्या हैसियत तुमने देख ली? मेरे पास ना जायदाद ना दौलत, और तुमने सैकड़ों रुपए आंख बंद करके मुझको दे दिए, और अगर मुझको दिया है तो तुमको भी कसम है, जाओ मुझी से ले लेना, मेरे महल जो खड़े होंगे सरकार में अर्जी लगाकर नीलाम करा लेना। मामा की ऐसी उखड़ी उखड़ी बातें सुनकर हजारवी मल बहुत सटपटाया और लगा मामा से मिलावट की बातें करने के आज तो तुम किसी से लड़कर आई मालूम होती हो, बता दो क्या बात है, बीवी साहब ने कुछ कहा या साहबजादे कुछ खफा हुए? यहाँ तो आओ बात सुनो, इधर तो मामा से ये कहा और उधर दुकान पर जो लड़का बैठता था एक पैसा उसके हाथ दिया कि दौड़ कर दो गलोरियाँ तो बनवा कर लाओ, और देख जरा सा जरदा भी अलग हथेली में लेते आइयो। जब मामा बैठ गई तो फिर हजारी मल ने हंसकर पूछा, मालूम होता है आज ज़रूर किसी से लड़ी हो? मामा ने कहा, खुदा ना करे, क्यों लड़ने लगी, बात पर बात मैंने भी कह दी, रत्ती बराबर झूठ कहा हो तो लो मेरा कान पकड़ लो। हजारी मल, ये तो ठीक है, व्यवहार तो मालिक के हाथ है, पर तुम्हारे हाथों से होता है या नहीं? ना तो हमारे नाम रुका ना चिट्ठी, तुमने मालिक के नाम जो मांगा सो दिया। मामा, हाँ यूं कहो, इससे मैं कब मुकरती हूँ, जो ले गई हूँ हजारों में कह दिया, लाखों में कह दूं, और हमारी बीवी भी रुए रुए से दुआ निकलती है, बेचारी कभी तकरार नहीं करती। हजारी मल, मामा, बेगम साहब तो हकीकत में बड़ी अमीर हैं, वाह क्या बात है। फिर हजारी मल ने आहिस्ता से पूछा, छोटी बहू साहब का क्या हाल है, कैसी हैं, अपनी बड़ी बहन के ढंगों पर हैं या और तरह का मिजाज है? मामा, लाला कुछ ना पूछो, बेटी तो अमीर घर की हैं पर दिल की बड़ी तंग हैं, दमड़ी का सौदा भी जब तक चार मर्तबा फिर नाले पसंद नहीं आता। हाँ खुदा रखे, हुनर सलीका तो दुनिया की बहु बेटियों से बढ़ चढ़ कर है, खाना उम्दा से उम्दा, सीने में दर्जियों और मुगलानियों को मात किया है, लेकिन लाला अमीरी की बात नहीं, अव्वल अव्वल तो मुझ पर भी रोक टोक शुरू की थी, सो लाला तुम जानते हो मेरा काम कैसा बेलाग होता है, आखिर को थक कर बैठ रही, बेगम साहब तो औलिया आदमी हैं और उन्हीं के दम कदम की बरकत से घर चलता है, हम गरीब भी उन्हीं का दामन पकड़े हुए हैं, बथेरा लोगों ने बेगम साहब को भड़काया लेकिन खुदा सलामत रखे उनके दिल पर मैल ना आया और किसी तरह का कलाम उन्होंने मुंह पर ना रखा। हजारी मल, सुना है छोटी बहू साहब को बड़ा भारी जहेज मिला? मामा ने छूटते ही कहा, खाक बड़ी से भी उतरता हुआ। हजारी मल, बड़ा ताजुब है, उनके ब्याह के वक्त तो खां साहब तहसीलदार थे, बड़ी बेटी से ज़्यादा देना लाजिम था। मामा, ए है तहसीलदार का कुछ दोस्त नहीं, उस बेचारे ने तो बड़ी बड़ी तैयारियाँ की थीं, यही छोटी खोटी मुँह बोली थी, अम्मा बाबा की खैरख्वाही के मारे कह कह के सब चीज़ें कम कराईं। हजारी मल, अगर यही हाल है तो बड़ी बहन की तरह ये भी अलग घर करेंगी, मामा अलग करना कैसा, ये तो बड़े गुल खिलाएंगी। बड़ी बहू बद मिजाज थी लेकिन दिल की साफ, और ये जुबान की मीठी और दिल की खोटी। कोई कैसा ही जान मार कर काम करे, इनकी खातिर तले नहीं आता। बात भी कहेंगी तो तह की, मुंह पर कुछ दिल में कुछ ना बाबा, ये औरत एक दिन निभा करने वाली नहीं। अब तो पहाड़ पर बाप के पास जाने की तैयारियां कर रही हैं। हजारी मल, लाहौर से इन दिनों कोई खत आया? मामा, हर रोज इंतजार रहता है, नहीं मालूम क्या सबब है, कोई खत नहीं आया। बीवी खर्च की राह देख रही हैं, रमजान सर पर आ रहा है। बल्कि परसों तरसों मुझसे कहती थी हजारी मल से 50 रुपए और कर्ज लाना। हजारी मल कर्ज का नाम सुनकर चौंक पड़ा और कहा, पिछला हिसाब चुका दें तो आगे को क्या इनकार है। बड़ी भी देखना, बेगम साहब से अच्छी तरह पर समझा कर कह देना कि जहां से बन पड़े रुपए का फिक्र करें। अब मेरे साझी मेरे रोके नहीं रुकते, ऐसा ना हो कल कला को मुझे बात देनी आ जाए। मामा, तुम्हारा रुपया खुदा ही निकलवाएगा तो निकलेगा, बेगम साहब कहाँ से देंगी? बाल बाल तो कर्जदार हो रही हैं। मोदी अलग जान खाता है, बजाज जुदा गुल मचाता है। हजारी मल, मुझको दूसरे लेनदारों से क्या वास्ता, हमारी दुकान का हिसाब तो बेगम साहब को बेबाक करना ही पड़ेगा। मैं तो बेगम साहब की सरकार का बड़ा लिहाज करता हूँ, लेकिन मेरा साथी चिदामी लाल अब किसी तरह नहीं मानता। अगर वो ये हाल सुन पाए तो आज नालिश कर दे। मामा, ये सब हाल बेगम साहब से कह तो मैं दूंगी, लेकिन घर का ज़रा ज़रा हाल मुझको मालूम है। नालिश करो, फरियाद करो, ना रुपया है ना देने की गुंजाइश, रुपया होता तो कर्ज क्यों लिया जाता। इतनी बातों के बाद मामा अजमत हजारी मल से रुख्सत होकर सौदा सलफ लेकर घर में आई तो मोहम्मद कामिल की माँ ने पूछा, मामा तू बाजार जाती है तो ऐसी बेफिक्र हो जाती है कि खाना पकाने का कुछ ख्याल तुझको नहीं रहता। देख तो कितना दिन चढ़ा है, अब किस वक्त गोश्त चढ़ेगा, कब पकेगा, कब खाना मिलेगा। मामा, बीवी मुए हजारी मल के झगड़े में इतनी देर हो गई, वो हर रोज मुझको आते जाते टोका करता है। आज मेरी जान जल गई और मैंने कहा कि क्या तूने मुझसे रोज की छेड़खानी मुकरर की है, क्यों मरा जाता है, जरा सब्र कर, लाहौर से खर्च आने दे तो तेरा अगला पिछला सब हिसाब किताब बेबाक हो जाएगा। वो मुआ तो मेरे सर हो गया और भरे बाजार में लगा मुझको फजीहत करने। मोहम्मद कामिल की माँ, हजारी मल को क्या हो गया है, वो तो ऐसा ना था, आखिर बरसों से हमारा उसका लेन देन है, सवेरे भी दिया है, देर करके भी दिया है, कभी उसने तकरार नहीं की। मामा, बीवी कोई और महाजन दुकान में साझी हुआ है, उस मुए ने जल्दी मचा रखी है, जिस जिस पर लेना था सबसे खड़े खड़े वसूल कर लिया, जिसने नहीं दिया नालिश कर दी। हजारी मल ने कहा कि बेगम साहब से बहुत बहुत हाथ जोड़कर मेरी तरफ से कह देना कि मेरे बस की बात नहीं, जिस तरह हो सके 2-4 दिन में रुपए की राह निकाल दें, वरना छिदामी लाल ज़रूर नालिश कर देगा। इस खबर के सुनने मोहम्मद कामिल की माँ को सख्त तरद्दुद पैदा हुआ। अमीर बेगम उनकी छोटी बहन खानम के बाज़ार में रहती थी, वो ज़रा खुशहाल थी। मोहम्मद कामिल की माँ ने मामा अजमत से कहा कि मामा लाहौर से तो खत का जवाब तक नहीं आता, खर्च की क्या उम्मीद है, अगर सचमुच हजारी मल ने नालिश कर दी तो क्या होगा, मेरे पास तो इतना असासा भी नहीं कि बेच कर अदा कर दूंगी, और नालिश होने पर दुनिया में भी बेइज्जती है, नाम तो सारे शहर में बद होगा। डोली ले आओ, मैं अमीर बेगम के पास जाती हूँ, देखूँ वहाँ कोई सूरत अगर निकल आए। मामा, बीवी नालिश तो हुई धरी है, जिसने मुँह से कहा उसको करते क्या देर लगती है, और छोटी बेगम बेचारी के पास कहाँ से रुपया आया, वो तो इन दिनों खुद हैरान है। मोहम्मद कामिल की माँ, आखिर फिर कुछ करना तो पड़ेगा। मामा ने पास जाकर चुपके से कहा कि महीने भर के वास्ते तमीज़दार बहू अपने कड़े दे देती तो बात रह जाती, बिलफेल इन कड़ों को गिरवी रख आधे तहाई हजारी मल के भुगत जाते। महीने भर में या तो मियाँ खर्च भेज देते या मैं किसी और महाजन से ले आती। मोहम्मद कामिल की माँ, अरे तू कोई दीवानी हुई है, खबरदार ऐसी बात मुँह से भी मत निकालना। अगर रहने का मकान तक भी बिक जाए तो बला से मुझको मंजूर है, लेकिन बहू से कहने का मुंह नहीं। मामा, बीवी मैंने तो इस ख्याल से कहा कि बहू हुई बेटी हुई कुछ गैर नहीं होती, और क्या खुदा ना करे कुछ बेच डालने की नीयत है, महीने भर का वास्ता है, चीज़ संदूकचा में ना पड़ी रही, महाजन के पास रखी रही जिसमें उसकी खातिर जमा रहे। मोहम्मद कामिल की माँ, फिर भी बहू बेटी में बड़ा फ़र्क होता है, और बहू भी नई ब्याही हुई कि अगर सच पूछो तो अभी अच्छी तरह उसकी घूंघट भी नहीं खुली, भला उससे कोई ऐसी बात कह सकता है? देखो खबरदार, फिर ज़ुबान से ऐसी बात मत निकालियो, ऐसा ना हो महमूदा के कान पड़ जाए और बहू से जा लगाए। मामा, साहबजादी तो अभी खड़े हुई सुन रही थी, मगर अभी उनको इन बातों की समझ नहीं। मोहम्मद कामिल की माँ, डोली ले आओ, मैं बहन तक जाऊँ तो सही, फिर जैसी सलाह ठहरेगी देखा जाएगा। मोहम्मद कामिल की माँ तो सवार हो खानम के बाजार सुधारी, और महमूदा ने सब हाल तमीज़दार बहू को जा सुनाया। पेशकश सैयद इरफान अली .com